Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था, उसे वहां पे चार स्त्रियां मिले। उसने पहली स्त्री से पूछा कि बहन आपका नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम बुद्धि है। तो व्यक्ति ने पूछा आप रहती कहाँ हैं? उसने कहा मैं मनुष्य के दिमाग में रहती हूँ। दूसरी स्त्री से पूछा तो उसने कहा मेरा नाम लज्जा है और मैं मनुष्य की आंखों में रहती हूँ। तीसरी ने कहा मेरा नाम हिम्मत है और मैं मनुष्य के दिल में रहती हूँ। चौथी ने कहा मेरा नाम तंदुरुस्ती है और मैं मनुष्य के पेट में रहती हूँ। इन चारों का परिचय मिल जाने के बाद व्यक्ति थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसे चार पुरुष मिले। उस व्यक्ति ने उनका भी परिचय जानना चाहा। पहले व्यक्ति से पूछा कि आपका नाम क्या है? तो उसने कहा मेरा नाम क्रोध है। व्यक्ति ने कहा कि आप रहते कहाँ हैं? उसने कहा मैं मनुष्य के दिमाग में रहता हूँ। तो व्यक्ति ने कहा वहां तो बुद्धि रहती है, आप वहां कैसे रह सकते हैं? तो क्रोध ने कहा कि जब मैं दिमाग में प्रवेश करता हूँ तो बुद्धि वहां से चलती बनती है, वहां नहीं रह सकती। दूसरे व्यक्ति से उन्होंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मैं लोभ हूँ और मैं मनुष्य की आंखों में रहता हूँ। उसने कहा आंखों में तो लज्जा रहती है, आप वहाँ कैसे रहते हैं? तो लोभ ने कहा कि जब मैं मनुष्य की आंखों में आता हूँ तो लज्जा वहाँ से चली जाती है। तीसरे व्यक्ति ने कहा कि मेरा नाम भय है और मैं मनुष्य के दिल में रहता हूँ, जैसे ही मैं वहाँ आता हूँ तो वहाँ से हिम्मत चली जाती है। और चौथे व्यक्ति ने कहा कि मेरा नाम रोग है, मैं मनुष्य के पेट में रहता हूँ, जब मैं आता हूँ तो तंदुरुस्ती वहाँ से चली जाती है। बड़ी प्रेरक सी बात है मित्रों की, कौन सी चीज़ हमारे अंदर रहे और कौन सी चीज़ ना रहे, किसे हम अपने अंदर स्थान दें और किसे स्थान ना दें, ये हम पे निर्भर करता है। यदि हमारे अंदर बुद्धि होगी, विवेक होगा और साथ ही साथ यदि लज्जा का भाव, हिम्मत का भाव या तंदुरुस्ती हम बनाए रखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी तरह से इन्हें अपने जीवन में शामिल करना होगा। क्रोध है या लोभ है या साथ ही भय का जो भाव है उसे हमें अपने आप से दूर रखना होगा। ऐसे प्रेरक प्रसंग के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय प्राता जी का। प्राता जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है।
थैंक यू।
इन चारों के विषय में क्या कहेंगे प्राता जी?
हाँ, ये चारों तो परफेक्ट चीजें हैं। क्रोध विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है। अगर किसी को बुद्धिमान बनना है
जी,
तो वो क्रोध से बचे, इसको शांत करे। पेट खराब, तंदुरुस्ती गई, आजकल बहुतों के साथ ही हो रहा है। और पेट को ठीक करना मुझे लगता है कि शायद बड़ा कठिन काम है। बहुत युवक आते हैं, छोटी आयु से ही पेट खराब, बेचारे सिकुड़े सिकुड़े हो जाते हैं, बुद्धि की क्षमता भी कम हो जाती है।
शायद कहते हैं कि पेट यदि ठीक नहीं है तो सारे रोग शायद पेट से ही पैदा होते
हैं, क्योंकि हजम नहीं हो रहा है भोजन, उससे रस रक्त जो शक्तियां हैं वो बनी नहीं रही हैं, तो मनुष्य बीमार हो जाता है। और आंखों में लज्जा, देखे लज्जा हो आए तो भाई भाई के प्रति भी मनुष्य लज्जा नहीं करता, ठगने की कोशिश करता है। लज्जा हो तो ये सब मारा मारी और ये सब समाप्त होके मनुष्य बहुत ईमानदार रहे, प्रेम हो उसके पास, ये सब सद्गुण हैं। अगर वो सब आ जाएं तो ये बुराइयां स्वतः ही भाग जाएंगी।
बिल्कुल, मतलब इन्हीं हम धारण करने की कोशिश करें, बाकी चीजों को अपने जीवन से दूर करते चलें। लेकिन देखा यही जाता है ना ब्रता जी कि ये सारी चीजें जब आ जाती हैं और ज्यादातर यही चीजें हमारे पास बनी रहती हैं और ये जो पहली चीजें हैं, जो कह लें लज्जा वाली बात है या बुद्धि वाली बात है, विवेक की बात है या अपने अंदर हिम्मत की बात है, वो शायद दूर हो जाते हैं और इनका आधिपत्य कहीं ज्यादा हो गया है हमारे
आजकल। यही हो रहा है बहुतों के साथ। लज्जा, वैसे तो नारी के लिए भी कहा जाता था लज्जा नारी का वास्तव में शील है, उसका श्रृंगार है, लेकिन आज वो सब तो समाप्त होती जा रही है। इसमें एक अहम भूमिका हमारी एजुकेशन ने भी निभाई। भले ही एजुकेशन बहुत बड़ी चीज है, विद्या नाम ही कितना सुंदर है, लेकिन उसने कई चीजें नष्ट कर दी मनुष्य के जीवन से। हिम्मत तो मनुष्य को कदम कदम पर चाहिए, अगर उसे भय रहता है दिल में तो हिम्मत का कोई स्थान सचमुच नहीं रहता और वो कठिन परिस्थितियों को पार भी नहीं कर पाता है। इन सभी को हम राजयोग के द्वारा अपने अंदर विकसित कर सकते हैं, क्रोध का शमन कर सकते हैं, अपने चित्त को शांत कर सकते हैं और एक निर्लोभ की भावना, अपना कर्तव्य करना है तो उससे ही हमें कमाई बहुत हो जाएगी, उससे ही हमारे घरों में सब सुख सुविधाएं आ जाएंगी। इन सब चीज़ों की बहुत आवश्यकता। साथ में मैं इस लोभ की बात आ गई तो एक चीज़ और जोड़ देना चाहता हूँ, यद्यपि इस बात पर कुछ लोग विश्वास करेंगे कुछ नहीं, भाग्य भी मनुष्य के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। यद्यपि भाग्य का निर्माता मनुष्य स्वयं है, लेकिन पूर्व जन्मों के कर्मों का जो फल हमें मिलता है उसे हम भाग्य कह देते हैं। अब के कर्मों का फल भी हमें मिलेगा, उसे लोग भाग्य नहीं कहते, वो सीधा कहते हैं भाई इसने मेहनत की इसलिए बेचारे ने सुंदर घर बनाया है, पैसा कमाया है। लेकिन पिछले जन्मों के कर्मों का इफेक्ट हमारे वर्तमान जीवन पर पूरी तरह पड़ता है। इसी कारण से हम देख सकते हैं किसी को थोड़ी मेहनत से बहुत ज़्यादा प्राप्तियाँ, किसी बच्चे ने जन्म ही एक धनवान के घर ले लिया, उसे सब कुछ हाथ में मिल गया है। इसके पीछे मनुष्य का श्रेष्ठ भाग्य भी काम करता है, इसलिए अपने भाग्य को मनुष्य सुधारे।
जिस बदलाव की बात कर रहे थे भ्राता जी, वो यही बदलाव है कि अपने जीवन में ये धारण कर ले और इन सारी नेगेटिव बातों को दूर करता चले अपने जीवन से। कुछ SMS आए हैं भ्राता जी हमारे पास, उनकी ओर मैं लिए चलता हूँ। इनमें से पहला जो SMS हमारे पास आया है, ये कहती है कि मैं एक BK हूँ और मुझे नींद बहुत आती है। मैंने मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास भी किया है, लिखा भी है, मैंने कोशिश भी की है, लेकिन होता ऐसा है कि जब मैं जल्दी उठ जाती हूँ, योग करती हूँ, तो फिर सारे दिन मुझे बहुत थकान बनी रहती है और मैं चिड़चिड़ापन अनुभव करती हूँ। और यदि मैं लगातार 8 दिन उठ भी जाऊँ, लेकिन उसके बाद फिर से नींद मुझ पर हावी हो जाता है, कृपया बताएं कि मैं क्या करूँ।
इनके शरीर में कोई बीमारी भी हो सकती है
जी,
शुगर लो हो, लो ब्लड प्रेशर रहता हो, भोजन ठीक से हजम ना होता हो, पेट अच्छा ना हो, इन सब चीज़ों के कारण भी मनुष्य का देह सुस्त बना रहता है, उसकी काम करने की भी इच्छा नहीं होती। एक तो इन्हें डॉक्टर से चेक करा देना चाहिए बहुत अच्छी तरह, और अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उसका निदान करा लेना चाहिए। सवेरे उठकर अगर बहुत थकान सारा दिन रहती है तो निश्चित रूप से शारीरिक बीमारियों का संकेत है, उसे इस पर फोकस करना चाहिए और ध्यान देना ही चाहिए। इसको अभी ठीक करा लेंगे तो सदा काल के लिए सुखी रहेंगे, विशेष रूप से जिसके हम चर्चा पहले कराए थे, पेट।
जी जी,
जो कुछ हम खा रहे हैं, एक व्यक्ति साधारण भोजन भी खा रहा है लेकिन उसका हाजमा ठीक है तो उससे शक्तियां, रस, सब कुछ उसके बॉडी को मिल रहे हैं और वो हेल्दी है, चुस्त रहता है। अब देख सकते हैं लोग बहुत ज्यादा नहीं सोते और सारा दिन अच्छे एक्टिवली काम करते रहते हैं, लेकिन अगर उसको हाजमा शक्ति ठीक नहीं है तो उसको वो चीजें मिल ही नहीं रही जो शरीर के लिए आवश्यक है। कुछ समय के लिए यंग एज है मनुष्य की तो मनुष्य कर लेता है काम धाम, लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती जाएगी उसको वीकनेस फील होती जाएगी, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एलोपैथी ट्रीटमेंट के साथ साथ मैं इसमें आयुर्वेद को भी सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि पेट का इलाज एक्चुअली मैंने देखा आज तक एलोपैथी के पास थोड़ा सा है, तत्कालीन तो ठीक कर देते हैं लेकिन लंबे काल तक अगर हमें अपने को ठीक रखना है तो अच्छा एक लंबा 6 मास तक कम से कम आयुर्वेद का इसके लिए अच्छा ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। साथ में मैं इनको ये भी कहूँगा ये प्राणायाम प्रारंभ करें रोज सवेरे सवेरे उठकर, ये थोड़ा घूमे फिरे भी, केवल बैठ के मेडिटेशन ही ना करें, थोड़ा घूमे फिरे ठंडी हवा में, सुंदर वातावरण में, चलते फिरते सुंदर चिंतन भी करें, क्योंकि हमारे हेल्थ पर हमारे चिंतन का भी बहुत गहरा इफेक्ट होता है। योग तो अलग एक शक्ति है ही, उसका भी हेल्थ पर इफेक्ट होता है, लेकिन सुंदर चिंतन हमारे बॉडी को भी जैसे चार्ज करता है, उसका भी अभ्यास करें। सवेरे उठ के प्राणायाम करें, कुछ लिखा करें, ये रोज लिखा करें, और थोड़ा काम में भी लगें, एक्टिव हों थोड़ा सा। थकान भले इन्हें शुरू में होगी, अगर इनका हाजमा ठीक रहता है तो धीरे धीरे वो थकान भी दूर हो जाएगी, लेकिन ये एक्टिवली काम करें अपने घर का ही, उससे इनकी ये सब समस्याएं समाप्त हो जाएगी।
तो कहते जी, जैसे कि 8 दिन लगातार उठने के बाद जो ये सोने की समस्या या दिन में जो थकान या चिड़चिड़ापन आता है, तो दवाइयों के अलावा क्या कुछ अभ्यास भी विशेष कर लें ताकि ये थकान।
हाँ, देखिए पानी चार्ज करके पिए वो भी एक दवाई है
जी, जी।
और आत्मा से पूरे बॉडी में एनर्जी भी दें, जो हम विधि बताते ही रहते हैं, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ या परम पवित्र हूँ और मुझसे वाइब्रेशंस ब्रेन को जा रहे हैं, पूरे देह में फैल रहे हैं, इसका बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे तो मेडिसिन के साथ इसकी बहुत अच्छी मदद मिल जाएगी।
बिल्कुल बिल्कुल। दादा जी, अगला जो हमारे पास SMS आया है, ये कहती हैं कि मेरी जो बिटिया है वो 14 साल की है और वो मानसिक रूप से उतनी ज़्यादा विकसित नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी के दौरान मैं ठीक से उसका ध्यान नहीं रख पाई हूँ, इसलिए कई बार मुझे भी गिल्ट फील होता है। दादा जी कई प्रकार के उपाय बताते रहते हैं, क्या मैं कुछ ऐसा उपाय कर सकती हूँ जो मानसिक रूप से वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाए। आजकल ये मानसिक समस्याएं भी बच्चों में बहुत देखने में आ रही हैं।
हाँ, छोटे बच्चों में जब ये बात देखने में आती है तो थोड़ा आश्चर्य भी होता है, लगता है एक व्यक्ति बड़ा हो गया है, चलो उसने बहुत चिंताएं पाली थी, उन्हें बहुत सारे पाप कर लिए थे, उसका लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं रहा, पता नहीं कैसे कैसे बिताया, उसको ये रोग होना तो समझ में आता है, लेकिन छोटे बच्चों को होता है, प्रैक्टिकल में हो रहा है, ये बिल्कुल पूर्व जन्मों से लाए हुए उनके संस्कार हैं या विचार हैं या कर्मिक अकाउंट है। अब इसकी माँ को तो जरूर ये लगता होगा कि मेरी गलती से ऐसा हो गया, पर गलती किसी की नहीं होती, इसलिए उसको ऐसी गिल्टी कॉन्शियस में नहीं रहना है कि मैंने उसकी केयर नहीं की और तब ये हो गया है। अपने केयर नहीं की वो एक पहलू है, लेकिन उसके अपने वाइब्रेशंस, उसके अपने कर्म इसके लिए मूल रूप से जिम्मेदार हैं। तो बच्ची को थोड़ा प्राणायाम सिखाएंगे और वो अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम में 10 मिनट रोज समय दें, ये उसके लिए बहुत जरूरी है। उसे सत साहित्य का अध्ययन भी कराना है अपने घर में। ये ध्यान रखना है कि वो जो आजकल की आधुनिक फैशन है ना, बहुत ज्यादा टीवी के सामने बच्चे बैठे रहना, एक बच्चे का तो ये हाल था, टीवी से बिल्कुल लग के बैठता था। मैं समझता हूँ 9th क्लास में वो है, थोड़ा लंबा हो गया है, मानसिक रूप से पूरा ऐसा कहें विकृत स्थिति उसकी है, जैसे है ही नहीं वो मानसिक रूप से हेल्दी। माँ उसकी बहुत चिंतित, माँ और वही है बहुत चिंतित बेचारी, सोचती इसके लिए क्या करूँ। मैंने भी उसको बहुत समझाने की कोशिश की, वो तो सुनता ही नहीं और हाइपर एक्टिव जैसा है। तो इनको बचाएं बच्चों को, टीवी बहुत देखना, इसे बैड एनर्जी भी आते हैं, ना जाने बच्चे क्या क्या सीखते रहते हैं गंदगी उससे, इंटरनेट मोबाइल इन सब से बच्चों को बचाना है, इसको बचाएं, प्राणायाम बहुत अच्छे करें। और ये माँ इसके लिए 2-3 चीजें करेंगे जी। एक, इसके ब्रेन को 10 मिनट रोज एनर्जी देना, एक टाइम निश्चित कर ले, बहुत अच्छा हो जब उसको नींद से उठाए तब ब्रेन को एनर्जी दे, क्योंकि तब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। 10 मिनट पहले 10 मिनट का पूरा फायदा उठा ले। मैं मास्टर सर और शक्तिवान हूँ ये अभ्यास करके उसके सिर पे हाथ रखे, उसको कहे आंखें बंद करो और ये संकल्प करे, ये पावरफुल एनर्जी इसके ब्रेन में जा रही है, इसके ब्रेन को परफेक्ट कर रही है, तो सबकॉन्शियस माइंड भी जागृत है, बहुत पावरफुल इफेक्ट इसका होगा। ये मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ जिनके ब्रेन को इस एनर्जी की जरूरत है
जी।
लेकिन उठते ही पहले 10 मिनट में अगर कर लिया जाए तो इट विल बी मोर इफेक्टिव। दूसरा, चार्ज करके इनको पानी भोजन सब खिलाए पिलाए, दूध आदि, और 1 घंटा इनके लिए योगदान करें, ये बहुत जरूरी है। 3 मास तक करें तो बच्चे बिल्कुल एफिशिएंट, उसका ब्रेन बहुत सुंदर हो जाएगा और वो अपने जीवन को आनंद पूर्वक जिएगी।
बिल्कुल, चलिए ब्रदर जी, हमारी भी शुभकामना रहेगी, क्योंकि खास करके जब बेटियों की ऐसी स्थिति होती है तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा चिंतित जरूर हो जाते हैं कि हमारी बिटिया का क्या होगा, और यदि मानसिक रूप से थोड़ी सी भी असंतुलन की स्थिति दिखती है तो परेशानी होती है। ब्रदर जी, क्या ऐसे में जो साइकियाट्रिक डॉक्टर्स हैं उनकी मदद कितनी ले लेनी चाहिए ताकि उनको इस अवस्था से बाहर निकलने में मदद
ही लेनी चाहिए? अच्छे साइकेट्रिक डॉक्टर मिल जाए
जी, जी,
तो थोड़ा मेडिसन भी काम करेगी और ये भी काम करेगा, क्योंकि वो फील्ड भी हमारा बहुत डेवलप्ड है ना आजकल संसार में ही। चलो, हमारे भारत में तो अभी ये तीव्र गति से बढ़े हैं रोग, और ऑस्ट्रेलिया में मैं मेलबोर्न में गया तो कहा गली गली में साइकेट्रिक डॉक्टर हैं, और 5 बड़े हॉस्पिटल हैं, साइकेट्रिक हॉस्पिटल 5 बड़े। कहा यहाँ तो जरा सा किसी को कुछ हो जाए फट से भागते हैं, मुझे कुछ हो गया है, चलो बताओ दवाई दो। तो रिसर्च बहुत हुई है और कहीं ना कहीं ये दवाइयाँ भी काम करती हैं, उसकी मदद भी लेनी
चाहिए जी। तथा जी, अगला हमारे पास जो SMS है ये गौरव का है, ये कहते हैं, ओम शांति, मैं बहुत डरपोक सा रहता हूँ, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, गुमसुम सा रहता हूँ हर पल, अकेलापन मैं फील करता हूँ, कृपया बताएं कि क्या इसका समाधान हो सकता है?
बिल्कुल, ये भी एक मानसिक रोग हो गया, ये डिप्रेशन की ओर बढ़ रही है इसकी मनोस्थिति भी
जी,
और गुमसुम ये रहता है, इसका चिंतन भी अच्छा नहीं होगा तो इसका भोजन भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसको भोजन खाने का मन नहीं करेगा। राजयोग का तो अभ्यास इससे बहुत मुश्किल ही होगा, परंतु अगर कोई इससे कराए तो सवेरे उठकर ये 108 बार लिखे, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, तो इसके अंदर जो एक भय की फीलिंग्स है ना, थोड़ी अकेलेपन की, वो इन दो चीजों से खत्म हो जाएगी, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ और रात को बैठकर लिखे मैं एक महान आत्मा हूँ। ये दोनों चीजें इतनी सुंदर हैं, बहुत लोग हमारे दर्शकों में से इसको लिखते हैं। चलो जो 108 बार नहीं लिख पाते ना और बिल्कुल ठीक ठाक हैं, वो 21 टाइम लिखा करें रोज, इसको अपने रूटीन में ले आए। तो इससे क्या है, एनर्जी ब्रेन को जाती है और ये जो भिन्न भिन्न तरह के भय हैं ये भी समाप्त हो जाते हैं। और इनके लिए वही राय है कि इनको 10 मिनट कोई भी इनके ब्रेन को एनर्जी दे और 1 घंटा इनको योगदान दे, क्योंकि इनकी स्थिति अभी नीचे उतर रही है। और अगर किसी ने इन पे ध्यान न दिया तो 1 साल में इनकी मानसिक स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी, फिर इनको संभालना बहुत कठिन होगा। इसलिए माँ बाप को चाहिए अभी बहुत ध्यान दें इस पर, राजयोग सीखें और इन अभ्यासों के द्वारा इसको इस महारोग से बाहर निकालें।
बिल्कुल, कई पेरेंट्स ये बात कहते हैं व्रता जी, उनके भी फोन कॉल आते हैं कि हमारे बच्चे, चाहे वो बेटा है या बेटी है, पढ़ तो रहे हैं लेकिन ऐसी स्थिति की ओर जाते जा रहे हैं, वो अकेले रहने लगे हैं। ये कहते हैं कि वो दरवाजा बंद कर लेते हैं, सारे समय अंदर ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन किसी से मिलना जुलना, बात करना, सोशल होना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, ये उनकी फितरत में नहीं है, अब वो ऐसे हो गए हैं। तो यहाँ वो परेशान रहते हैं कि इनका आगे होगा क्या।
बिल्कुल, परेशान रहना माँ बाप का तो लाजमी है, क्योंकि ये स्थिति एक डिप्रेशन की स्थिति है। कईयों को हमने सुना, लड़कियों का सुना, उन्होंने अपने को एक कमरे में बंद ही कर लिया है और बस ऐसा लगता है जीवन भर ये उस कमरे से बाहर नहीं जाएंगी। वहीं उनको खाना दे दिया जाता है, वहीं वो अपना नहाना धोना कर लेती हैं, वहीं रहती हैं, टीवी देखने की भी इच्छा नहीं होती। इनमें ये जो बॉडीलेस सोल्स हैं इनका भी कुछ रोल होता है, परंतु ये एक मानसिक रोग भी हो गया है। जिस मनुष्य के विकर्मों का खाता बहुत ज़्यादा है उसकी मानसिक स्थिति ऐसी दयनीय हो गई है, ऐसे केसेज में भी कोई व्यक्ति उनको मदद
करे। जैसे मदद की बात आपने कही, पेरेंट्स कम से कम ये योग का अभ्यास उनके लिए अवश्य करें। ब्रदर जी, ये हमारे पास अगला SMS है अनीता जी का। ये कहती हैं कि भाई जी ओम शांति, मैं समाधान प्रोग्राम देखती हूँ और 2006 से मैं अवेकनिंग भी देख रही हूँ। आप जो उपाय सुझाते हैं उससे बहुत ही चमत्कारिक लाभ मुझे प्राप्त हुए हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। इन्होंने चमत्कारिक लाभ की बात तो कही है, लेकिन क्या लाभ प्राप्त हुआ है ये नहीं।
चलो इनको भी हम बधाई देते हैं ऐसे ही ये लाभान्वित होती रहें और दूसरों को भी कराते रहें।
बिल्कुल दादा जी, अगला जो हमारे पास SMS आया है मैं अब उसकी ओर लिए चलता हूँ। ये एक विद्यार्थी है ब्रदर जी और अभी CA फाइनल में है। ये कहते हैं कि नेक्स्ट मंथ ही मेरा एग्जाम है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा घबराहट महसूस कर रही हूँ। और होता मेरे साथ ये है कि जब एग्जाम के 1 मास रह जाते हैं तो मैं जब पढ़ने बैठती हूँ तो पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाती हूँ, कई बार पढ़ने को मन भी नहीं करता है और इसी कारण मेरा रिजल्ट बिगड़ जाता है। वैसे तो 70-80% मेरा सिलेबस कंप्लीट हो ही जाता है, लेकिन जो फाइनल टच मुझे देना चाहिए वो मैं नहीं कर पाती हूँ। 12वीं से ये मेरी स्थिति चली आ रही है, कृपया सुझाव दें ताकि मेरा रिजल्ट अच्छे से अच्छा हो सके। 1 मास बचता है तो ज्यादा शायद घबरा जाते हैं,
लगता है कि वो आया आया क्या आएगा, तो एक अंदर में एक सटिल फियर इनके उत्पन्न हो जाता है। और ये भय हमारे ब्रेन की अनेक चीजों को डैमेज करता है, एकाग्रता तो इससे नष्ट होती है और न जाने क्या क्या रोग के बीज भी हमारे ब्रेन में इससे पड़ जाते हैं। भय सचमुच जीवन के हर पहलू के लिए बहुत ही खतरनाक है, इसलिए पहले तो इन्हें भय से मुक्त होना है और राजयोग के अभ्यास में जैसा हम सिखाते हैं इसका अभ्यास करें। और आई विल एंजॉय माई एग्जाम, ये अच्छा कर, बिल्कुल ये संकल्प करें और रोज सवेरे जो ये 2 संकल्प हम सबको सिखाते हैं इसके रिजल्ट तो बहुत ही सुंदर हैं। बच्चे चलते फिरते ही हमें बताते रहते हैं कि जब से हमने अभ्यास शुरू किया मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ और सफलता मेरा जन्म से अधिकार है, तो हमें कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। और जो एक हमेशा भयभीत रहने की आदत होती थी, या ये कि CA का एग्जाम तो बड़ा कठिन है, अरे कौन क्लियर करता है, देखो हजारों में से कोई 1-2 बच्चे क्लियर कर पाते हैं, पता नहीं मेरे से होगा या नहीं, ये जो एक कंफ्यूजन और लेस कॉन्फिडेंस की स्थिति होती है ये बिल्कुल इससे ठीक हो जाती है। बाकी इनको मिनिमम आधा घंटा रोज मेडिटेशन करना चाहिए, जस्ट इस पर्पज से कि मेरा एग्जाम बिल्कुल क्लियर हो और कॉन्फिडेंस ये धारण कर ले। सवेरे उठते ये विजन भी बनाए, जो भी है कि नेट पे मेरा नाम आ गया है, रोल नंबर आ गया है, और एक विजन बनाए कि मैं एग्जाम दे रही हूँ और मुझे सब याद है, सब क्वेश्चंस वही आ गए हैं जो मैंने प्रिपेयर किए थे और मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत एंजॉय कर रही हूँ, ऐसा एक विजन भी बनाए, योग भी करे, सवेरे उठ के संकल्प भी करे, तो ये इनकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाएगी और क्लियर हो जाएगा, सीए बनकर आनंद बनाएगी।
चलिए, हमारी भी शुभकामना इनके लिए रहेगी भ्राता जी। लेकिन ज्यादातर यही होता है कि बच्चे जो शायद पूरी तरह तैयार नहीं हो पाए हैं, बहुत घबरा जाते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, और कईयों को तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। और
सीए वालों के साथ ये ज्यादा होता है, सीए वालों के साथ ज्यादा होता है।
जी जी,
उन्हें लगता है बहुत कठिन है।
बिल्कुल, लेकिन ये क्लियर कर लेंगे अभ्यासों से। दादा जी, अगला हमारे पास आया है जो SMS, ये कहते हैं कि मैं 25 साल का हूँ और कुछ समय से हम ज्ञान में जुड़े हुए हैं। पिताजी ही हमें ज्ञान में लेकर के आए थे, लेकिन ज्ञान में होने के पश्चात भी वो शराब लेते हैं और बीड़ी भी पीते हैं। जब मैं उनसे कहता हूँ कि ज्ञानी आत्माओं को तो ये नहीं लेना चाहिए, तो वो नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे परेशान करते रहते हो। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या उन्हें उनकी हालत में छोड़ देना चाहिए या उन्हें कुछ कहना चाहिए?
वो तो एक्चुअली बच्चों को ज्ञान मार्ग पे इसलिए लाए थे कि भाई मेरे में जो गंदी आदत है बच्चों में न पड़े।
अच्छा,
बड़ी शुभ भावना उनकी थी और ये बहुत अच्छा काम किया। चाहते तो वो भी होंगे कि मेरी ये बुराइयां छूट जाएं, पता तो उन्हें सब कुछ है।
लेकिन हम तो सुनते हैं ब्रता जी कि जैसे आप हमेशा कहते हैं कि ज्ञान मार्ग में आने के बाद ये सारी बुरी आदतें छूट जाती हैं।
उन्होंने साधनाएं की नहीं और छोड़ने की इच्छा भी नहीं जाहिर की। देखिए, ये होता क्या है कि एक मनुष्य अगर ये मान बैठा है कि ये मुझसे छूटेगा नहीं, तो समझो वो हार मान गया, अब उसे कभी नहीं छूटेगा। और यदि एक मनुष्य दृढ़ करता कर लेता है कि मुझे छोड़ना है, मैं तो देवकुल की महान आत्माओं में तो पवित्र हूँ, ये गंदगी अब इस मंदिर में नहीं जा सकती, तो ये दृढ़ता और साथ में योग अभ्यास उसे इस फील्ड में सफल कर देते हैं। बस इसके लिए यही करना है कि बच्चे, कोई भी एक बच्चा इनके में से अपने पापा के लिए आधा घंटा योगदान करे और माताजी उनको पवित्र भोजन खिलाए, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ योग युक्त होकर बहुत प्यार से भोजन बनाए और संकल्प करे इस भोजन को खा के ये आत्मा पवित्र हो जाए।
मतलब ब्रता जी, कहा जाए कि एक तो दृढ़ इच्छा होनी चाहिए व्यक्ति को खुद ही छोड़ने की, और साथ ही साथ जब तक साधना नहीं करेंगे तो ये बुराइयां नहीं छूटती है। मतलब ये कई लोग समझ जाते हैं कि हम ज्ञान मार्ग में आए या थोड़ा सा योग का अभ्यास करें तो ये सब छूट जाती है, ऐसा नहीं है। थोड़ी साधना करने की आवश्यकता होती होती है। चलिए, उम्मीद करेंगे कि इनके पिताजी भी थोड़ी साधना करें और बच्चे तो मुक्त हैं ही, ये भी इन बुराइयों से मुक्त हो जाएं। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, वैसे तो बहुत सारी तकलीफें हैं और साथ ही समस्याओं से जीवन हम जूझते ही रहते हैं, जीवन में भरे पड़े हैं समस्याएं। लेकिन फिर भी यदि व्यक्ति एक साधना के मार्ग में, अच्छाई के मार्ग में दृढ़ता से चलना चाहता है, तो निश्चित रूप से, जैसे कहते हैं ना कि जहाँ लगन हो वहाँ हर चीज सहज प्राप्त हो जाती है, तो यदि लगन पूर्वक हम अच्छाई के मार्ग पे चलना चाहेंगे, अच्छाइयों को धारण करना चाहेंगे, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि अच्छाइयां हम में ना आए, बुराइयां दूर ना हो। बात वही है कि शायद हमने स्वीकार कर लिया है, अपनी हार मान ली है, स्वीकार कर ली है कि शायद यही जीवन है, अब ऐसे ही हमें जीना होगा, या जो आदतें हमने अख्तियार कर ली हैं ये आदतें शायद अब हमसे छूटेंगी नहीं। अब हमने यदि ये मान लिया है तो वो कभी छूटेंगी नहीं, लेकिन एक हिम्मत का कदम तो जरूर बढ़ाएं। मैं सुनता रहा हूँ यहाँ ब्रह्म कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय में परमात्मा के महावाक्य कि वो कहते हैं कि हिम्मत का एक कदम तुम बढ़ाते हो तो 1000 कदम मैं तुम्हारी ओर बढ़ाता हूँ। और जब हम अच्छाई की ओर बढ़ना चाहते हैं, प्रकाश की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से परमात्मा की संपूर्ण शक्तियां हमें मदद करती हैं, हम उस दलदल से बाहर आ सकते हैं। आवश्यकता मित्रों केवल एक कदम बढ़ाने की है। क्या आज हम ये संकल्प ले सकते हैं कि बुराइयों से मुक्त होने के लिए आज मैं एक कदम जरूर बढ़ाऊंगा? बढ़ा के देखें, परमात्मा की मदद आपको अवश्य मिलेगी। हमारी भी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अपना ख्याल रखिएगा, कल पुनः इसी समय पे आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।